ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रीमद्भागवतम स्कंद 4 अध्याय 30 श्लोक संख्या 19 प्रचेताओं के कार्यकलाप। गृहेषु आविशता चापि पुंसा कुशलकर्माणं मद्वार्तयात यामानं न बन्धाय गृहा मताः गृहे स्वाविशतं चापि पुंसां कुशलकर्मणा मद्वार्तयातयामानम् न बन्धाय गृहामताः गृहे स्वाविशतं चापि। सभी बोलिए, ये उत्तम श्लोक की हम उच्चारण करते हैं। गृहे स्वाविशतं चापि पुंसां कुशलकर्मणा मद्वार्तायातयामानम् न बन्धाय गृहामतः गृहे स्वाविशतं चापि पुंसां कुशलकर्मणं मद्वार्तयातयामानम् न बन्धाय गृहामताः। गृहे स्वाविशतं चापि पुंसा कुशलकर्मणं मद्वार्तायातयामानं न बन्धाय गृहामताः गृहे स्वाविशतं चापि पुंसां कुशलकर्मणां मद्वार्तायातयामानम् न बन्धाय गृहामता तं चापि पुंसा कुशलकर्मणाम् मद्वार्तायातयामानम् न बन्धाय गृहामता गृहे स्वाभिसतां चापि पुंसा कुशलकर्मणाम् मद्वार्तायातयामानम् न बन्धाय गृहव्रताः माताजि अभिसतां चापि पुंसां कुशलकर्मणाम् मद्वार्तायातयामानम् न बन्धाय गृहामता शब्दार्थ गृहेषु गृहस्थ जीवन में आभिसताम प्रविष्ट हुए च तथा अपि भी पुंसाम मनुष्य का कुशल कर्माणम शुभ कर्म में लगे हुए मद्वार्ता मेरी कथाओं में यात विदता है यामानम जिनकी प्रत्येक क्षण नहीं बंधाय बंधन हेतु गृहा गृहस्थ जीवन मताः विचार किया गया। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद जो लोग भक्ति के शुभ कर्म में लगे होते हैं वे यह भलीभांति जानते हैं कि श्री भगवान ही समस्त कर्म का परम भक्ता है। अतः जब भी ऐसा व्यक्ति कोई कार्य करता है तो कर्म फल भगवान को अर्पित कर देता है और भगवान की कथाओं में ही सारा जीवन बिताता है। ऐसा व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में रहकर भी कर्म फल से प्रभावित नहीं होता। तात्पर्य ध्यानपूर्वक सुनिए। सामान्यतः परिवार में रहते हुए व्यक्ति सकाम कर्म में अत्यधिक आसक्त रहता है, अर्थात वो अपने कर्म की फल को भोगने का प्रयास करता है। किंतु भक्त जानता रहता है कि श्री कृष्ण ही परम भोक्ता है तथा स्वामी है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। अतः भक्त अपने को किसी भी व्यापार का स्वामी नहीं समझता, वह श्री भगवान को ही स्वामी मानता है। अतः अपने सारे व्यापार का फल परमेश्वर को ही अर्पित करता रहता है। अतः जो व्यक्ति इस तरह अपने परिवार तथा लड़के बच्चे के बीच रहता है वो भौतिक संसार की कलमश से प्रभावित नहीं होता। इसकी पृष्टि भगवत गीता 3:9 में इस प्रकार हुई है। यज्ञार्थत् कर्मण अन्यत्र लोकयम् कर्म बंधनः तदर्थम् कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। जो व्यक्ति अपने कर्म की फल भोगना चाहता है वह फल से बन जाता है। किंतु जो व्यक्ति फल या लाभ को श्री भगवान को अर्पित कर देता है वह उनसे नहीं बनता। सफलता का यही रहस्य है। कर्म फल से मुक्त होने की उद्देश्य से ही लोग संन्यास ग्रहण करते हैं। जो व्यक्ति अपने कर्म का फल को ग्रहण नहीं करता अपितु परमेश्वर को अर्पित कर देता है वो निश्चित रूप से मुक्त अवस्था में रहता है। श्री रूप गोस्वामी ने इसकी पुष्टि भक्ति रसामृत सिंधु में इस प्रकार की है। इहा जस्य हरेर दास्ये कर्मणा मनसा गिरा निखिलास्य अप्सु अवस्थासु जीवन मुक्त सोच्यते। जो व्यक्ति अपने जीवन धन वाणी बुद्धि तथा अपने पास जो कुछ भी है उससे भगवान की सेवा करता रहता है वह सभी प्रकार से सदैव मुक्त होता है। ऐसा व्यक्ति जीवन मुक्त कहलाता है। जो लोग कृष्ण भक्ति से रहित होकर भौतिक कार्य में लगे रहते हैं वो भव बंधन से अधिकाधिक फंसते जाते हैं। उन्हें अपने सारे कर्म की फल भोगना पड़ता है। अतः यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन मानवता के लिए महानतम वरदान है क्योंकि यह मनुष्य को कृष्ण भक्ति में लगाता है। भक्तगण कृष्ण का ही चिंतन करते हैं, कृष्ण के लिए ही कर्म करते हैं, उन्हीं के लिए खाते पीते तथा सोते हैं। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु कृष्ण की ही सेवा में लगाते हैं। कृष्ण भक्ति भौतिक कल्मश से बचाती है। जैसा कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने कहा, कृष्ण भजने जहां यह अनुकूल विषय बलिया त्यागे तहां है भूल। अर्थात यदि कोई इतना सक्षम हो कि प्रत्येक वस्तु को भगवान की ही सेवा में अर्पित कर सके तो उसके लिए इस भौतिक जगत का परित्याग भारी भूल होगी। मनुष्य को सीखना चाहिए कि किस प्रकार प्रत्येक वस्तु को भगवान की सेवा में लगाए जाए, क्योंकि प्रत्येक वस्तु का संबंध श्री कृष्ण से है। यही जीवन का असली उद्देश्य और सफलता का रहस्य है। भगवत गीता में इसकी पुष्टि की गई है। तस्मात असक्त सततम कार्य कर्म समाचर असक्त याचरण कर्म परम अपनोति पुरुषः। इसलिए कर्म फल में अनासक्त भाव से कर्तव्य की भली भांति कर्म करना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर किया गया कर्म परम लक्ष्य की प्राप्ति कराने वाला है। भगवत गीता की तृतीय अध्याय में इंद्रिय तृप्ति हेतु भौतिक कार्य तथा परमेश्वर को प्रसन्न करने की हेतु भौतिक कार्य पर विशेष विचार किया गया है। निष्कर्ष यह है कि ये एक नहीं है। इंद्रिय तृप्ति के हेतु किए गए कार्य भौतिक बंधन के कारण है, जबकि कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किए गए वही ही कार्य मुक्ति के कारण है। यही कर्म बंधन तथा मुक्ति के कारण कैसे हो सकता है, इसकी व्याख्या इस प्रकार दूध की बनी हुई वस्तुएं यथा खीर रबड़ी आदि खाने से कुपच हो सकता है, किंतु कुपच होते हुए भी दूध से ही बना मट्ठा कुपच को दूर कर देता है। दूसरे शब्द में दूध की बनी एक वस्तु कुपच तथा अतिसार का कारण बन सकती है, किंतु दूध से ही बनी दूसरी वस्तु उसे अच्छा कर सकती है। यदि कोई व्यक्ति भगवत कृपा से भौतिक ऐश्वर्य को प्राप्त करता है तो उसे उस ऐश्वर्य को बंधन का कारण नहीं समझना चाहिए। जब किसी भक्त को ऐश्वर्य लाभ होता है तो उस पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वह इस ऐश्वर्य को भगवान की ही सेवा में लगाने की विधि जानता है। संसार के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलता है। पृथु महाराज प्रहलाद महाराज, जनक, ध्रुव, वैवस्वत मनु तथा महाराज इक्ष्वाकु जैसे अनेक राजा हुए हैं, वे महान राजा थे और इन पर भगवान की विशेष कृपा थी। यदि भक्त प्रौढ़ नहीं है तो भगवान उसके ऐश्वर्य को छीन लेते हैं। श्री भगवान स्वयं इस सिद्धांत को बताते हैं, जस्याहम अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनम शनैः। मैं अपने भक्त पर जो सबसे पहली कृपा दिखाता हूं वो है उसके समस्त ऐश्वर्य का हरण। जो ऐश्वर्य भक्ति में बाधक होता है उसे भगवान ले लेते हैं, किंतु कोई व्यक्ति भक्ति में परिपक्व है तो वे उसे सारी भौतिक सुविधाएं प्रदान करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। ओं अज्ञान तमिरांधस्य ज्ञानांजन सलकाय चक्षुर उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति सोपदान्तिकम्। वंदे अहम श्रीगुरु श्रीजुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांस श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथं नित्यं त्वं साजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादं सहगणा ललिता श्री विशाखानितंस। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशो गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महाबदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओं विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्यत्य देश तारिणे। तो हम प्रातःकालीन इस भागवतम सत्र में प्रचेताओं की पवित्र कथाओं को हम श्रवण करते हैं, जो मैत्र मुनि से विदुर जी श्रवण कर रहे हैं कि कैसे प्राचीन वरी उन्होंने सकाम कर्म में लिप्त थे और नारद जी उस प्राचीन वरी की इस बद्ध दशा को देखते हुए उनको बहुत विशेष कलात्मक ढंग से उपदेश देकर इस कर्म बंधन से मुक्त किए। जय श्री श्री गौनिताय श्री श्री राधा रास विहारी ललिता विशाखा देवी श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। उसके बाद विदुर जी ने मैत्री जी से कहे कि प्राचीन वरी अपने 10 पुत्रों को संतान उत्पन्न करने के लिए तपस्या करने के लिए उन्होंने भेज दिया और उन्होंने शिव जी के दर्शन प्राप्त किए। शिव जी के द्वारा जो उनको मंत्र दिया गया था उस मंत्र से उन्होंने भगवान विष्णु के दर्शन प्राप्त किए। उसके बाद उनकी क्या हुआ इस प्रसंग को सुनाई। तो मैत्री जी ऐसे विदुर जैसे महाभागवतम के प्रश्न से विभोर होकर उन्होंने इस प्रचेताओं की कथा सुनाते हैं कि प्रचेताओं कितने साल तक तपस्या किए, 10,000 साल तक। कहां पर? हाँ, कौन सा पानी, कौन सा स्थान था? हाँ, उस सरोवर का तो नाम होगा ना, हाँ, मानस सरोवर। वहां पर इतनी उन्होंने कठोरता से, एकाग्रता से भगवान की तपस्या की, 10,000 साल तक। आप सोचिए, और कैसे तपस्या कर रहे थे? हाँ, जल के अंदर क्या मिलेगा उनको भोजन करने के लिए? सिर्फ पानी पीकर। इतनी निष्ठा थी। तो फिर भगवान विष्णु उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर तो उनको पहले वरदान दिए। क्या वरदान दिए? क्या वरदान दिए? पहले भगवान उनकी तपस्या से खुश हो गए। वो कहें कि आप लोग 10 होने पर भी अब सभी भाइयों के मन में एक ही विचार है। वो क्या है? कौन सा विचार है? भगवान के प्रति आसक्ति व भक्ति। इससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। तो ऐसे हमारी जो कृष्ण भावनामृत संघ है, वैरायटीज, हमारी अलग अलग स्थान से हम जन्म लिए हैं, परंतु यदि हमारे उद्देश्य एक है, कृष्ण और गुरु को प्रसन्न करना है, तो भगवान भी उसमें रिझ जाते हैं, प्रसन्न होते हैं। यदि हमारी सभी के इंटेंशन एक है, तो भगवान कहें कि जो आपके इस प्रसंग को श्रवण करेगा तो उनके मन में जमा हुआ मल तुरंत ही साफ हो जाएगा और मेरी परम धाम को प्राप्त करेगा। केवल इस प्रसंग को सुनने से क्या भाइयों की मन में कितनी उच्च विचार है, एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना है। तो फिर भगवान उनको वर देते हुए वो कहते हैं कि देखो, कल जो भीमा प्रभु चर्चा किए थे, अथ मई अनापायनम भक्त्या, मेरी अविचल भक्ति से पक्को गुणाशया। आशय का मतलब है हृदय और मन। अभी ये मन और हृदय क्या है? जवान है। जब तक भोग की इच्छा है, शरीर वृद्ध होने पर भी मन क्या रहता है? जवान रहता है। परंतु भक्ति करने से हृदय में पड़ा हुआ काम वृद्धावस्था को प्राप्त करता है। इसलिए कहते हैं कि पक्को गुणाशयाः। और भगवान पहले कहते हैं, आप लोग जो तपस्या करते हैं, ये तपस्या का फल कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने पर भी 10,00,000 वर्षों तक आप विषय की भोग कर सकते हैं। भौमान भक्ष्यान दिव्य सहस्राणाम सहस्रम। और इस विषय भोग करते हुए आपकी शरीर की शक्ति क्षण नहीं होगा। किस लिए? न अनुग्रहीन ममा, ये मेरी अनुग्रह है, मेरी आशीर्वाद है। और फिर कहें क्यों मेरी आशीर्वाद आपकी पर है? क्योंकि आप मेरी अनन्य भक्ति में लगा हुआ है। भगवान को प्राप्त करने के लिए मन में एक ही वासना होनी चाहिए, क्या? न अन्य। हमारी चेतना को सिर्फ भगवान के पास पहुंचाना चाहिए। अनन्य चेता सततम, भगवान कहते हैं कि अनन्य चेता सततम, जो मां स्मरति नित्य सह तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य जुक्तस्य जोगिना। चेतना न अन्य और सततम हमेशा। स्मरति नित्य सह, तीन विशेषण देते हैं, सततम नित्य सह और अनन्य चेता। इससे मुझे कोई साधक बहुत आसानी से मुझे प्राप्त कर सकता है। तस्या अहम सुलभम ना दुर्लभ, मैं बड़ी कठिनाई से प्राप्त नहीं होता हूं, सुलभम अति शीघ्र अति आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए कह रहे कि उपास्यत अथ मध्धाम निर्विद्य निरयादत। इसी प्रकार उपासना करने से भक्त की हृदय में जो ग्रंथि पड़ा है, काम वासना है, वो क्या होता है, जो निरय देने वाले हैं, नरक को भेजने वाला है, तो उससे निर्विद्य हो जाता है, मुक्त हो जाता है। तो श्रीधर स्वामी इस श्लोक की टीका बहुत सुंदर रूप में प्रस्तुत किए हैं। वो कहते हैं कि भक्ति कैसे नरक से भक्तों को बचाता है। पक्व गुण दग्ध कामादि मलह आशाय जेसाम अतः। जैसे कोई बीज है तो बीज को यदि हम जमीन में डालते हैं और उसके पर बारिश हो जाए तो फिर क्या होगा, वृक्ष से वृक्ष होगा। लोग कभी कभी प्रश्न करते हैं एक कार्य कारण के नियम के ऊपर, वो कहते हैं पहला फल है कि पहला वृक्ष है, क्या कहेंगे, बीज है कि वृक्ष है, बीज है, तो वृक्ष के बिना बीज कैसे हो सकता है, बोलिए, बिना वृक्ष से बीज हो सकता है, भगवान। तो देखिए ऐसे जो कार्य कारण के नियम है, वृक्ष के कारण क्या है, बीज है, और बीज के कारण भी वृक्ष है, तो सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन यह है कि भगवान कहते हैं सर्व जोनिस कुंतय मूर्तय संभवंति जा तासंग ब्रह्मा अहं बीज प्रदपिता महज्वनिर अहं बीज प्रदपिता। तो सर्व जोनिसु बीज पिता है भगवान, परंतु इस बीज को भगवान स्वयं क्रिएट करते हैं कर्म के अनुसार, परंतु इस बीज को भगवान स्वयं पका देते हैं। जैसे कहते हैं ना भक्तिया भक्तिया गृहीत चेता, भक्ति से ये जो बीज है, ये बीज क्या है, जो ये शरीर रूपी वृक्ष को बना देता है, ये बीज को भक्ति ही भूंज देता है, फ्राई कर देता है। तो फ्राई हुए बीज को हम यदि जमीन पर डालें फिर उसमें पौधा हो सकता है, नहीं होगा। तो इसलिए जो भक्ति है ये हमारी कर्म वासना को पका देता है, फ्राइड कर देता है। अतः लोकात लोकत लोकात भोगात निरय प्राय निर्विद्य मतस्थान प्राप्स्यथ। यही कर्म वासना जो भौतिक संसार में लेके आता है, वही वासना यदि शुद्ध रूप में भगवान के प्रति बढ़ जाए तो क्या होगा, मध्धामा, मेरी धाम को प्राप्त करा देगा। यही काम वासना जब अत्यधिक होता है तो हमको ये नरक में डालता है, परंतु यही वासना यदि भगवान के प्रति अत्यधिक बढ़ जाए तो फिर भगवत धाम लेके जाता है। जंग काम क्रोध सहज प्रणयादि भीति बात्सल्य मोह गुरु गौरव्य सेव्य भावम संचिंत्य तस्य सदृशिं तनुमा फुरते गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजाम। कहते तनुम आपुरते, इसी प्रकार शरीर प्राप्त होती है। ये काम की शरीर देखो जीर्णता को प्राप्त करता है। काम वासना से जो शरीर मुक्त हो गया है वो हमेशा ही नवजो वनांच। इसलिए भगवत धाम में शरीर को बुढ़ापा प्राप्त नहीं होता है, बीमारी प्राप्त नहीं होता है। काम प्रेम में यही अंतर है। काम इस शरीर को जलाता है, परंतु प्रेम इस शरीर में अमृत प्रवाह करता है। इसलिए आध्यात्मिक जगत में भगवान के प्रति जो आसक्ति है इसको काम कहा जाता है, परंतु इसके स्वरूप क्या है? प्रेम की गंगा है, पवित्र है। और यही संबंध हम गुरु के साथ ही प्राप्त करते हैं। प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य, वही करुणा सागर, वो प्रेम की सागर की वाड़ को यहां पर गुरु प्रतिनिधि के रूप में लाते हैं। और बद्ध जीव को ऐसे ही अपनी शक्ति से जोड़ते हैं। जैसे मैं पहले भी बताया था, जल ही कमल को पोषण करता है ना। जल के अंदर कमल खिलता है, परंतु इसको खिलाने के कार्य कौन करता है? कमल कब खिलता है? सूर्य के द्वारा दिन में। परंतु वह कमल यदि पानी को छोड़ करके ऊपर आ जाए और वो सोचे कि मुझे सिर्फ सूर्य ही पोषण कर रहा है, पानी की कोई आवश्यकता नहीं है, तो क्या होगा इसके परिणाम? हाँ, वही सूर्य जो इसको पोषण करता है वही सूर्य इसको भी शोषण करेगा, सुखा देगा, पत्ते को, पंखुड़ी को सुखा देगा। तो उसी प्रकार जो भक्ति की रस गुरु की कृपा से हमको पोषण होती है, तो वही कृपा की हम अवहेलना कर दें, त्याग कर दें, तो हमारी भक्ति भी सूख जाएगा। इसलिए आश्रय लइया, हम आश्रय लेना चाहिए। आदो गुरु पदाश्रय। तो इसलिए वो कहते ननु गृहेषु प्रविष्ट अनासक्तम तदह शक्तिया बंध एव स्यात् कृतः तद भक्ति निर्वेदं वा तत्राह गृहेषु अपि। इसमें दो विशेषण दिए हैं श्लोक में, क्या है? भगवान कहते हैं कि आप गृहस्थ में प्रवेश करने पर भी आपको गृहस्थ के बंधन नहीं लगेगा। किस लिए? कहते कुशल कर्माणम, और दूसरा कहते हैं मदवार्ता यात आमानम। हम सभी फंसे हुए हैं, परंतु बुद्धि से निकलना चाहिए, निकलना चाहिए। भगवत गीता में भगवान कहते हैं बुद्ध्या युक्त जहातिह उभे सुकृत दुष्कृतम तस्मा जुगाय जुज्यस्वः जोग कर्मसु कौशलम। ये कर्म की एक टेक्निक है, कुशलता है। कैसे हम कर्म करें? दोनों शुभ और अशुभ कर्म, जो हमको लगता है भाई ये मेरी अच्छा फायदा करने वाले हैं, ये मेरे जीवन को धन्य बनाने वाले हैं, सुख देने वाले हैं, और ये कर्म मुझे दुख देने वाले हैं, बंधन में डालने वाले हैं। परंतु दोनों कर्म में जो हम डिस्टिंक्शन करते हैं, भेद निर्णय करते हैं, तो दोनों कर्म ही हमको बांधने वाला है, चाहे सुख हो वा दुख हो। सुख भी एक बंधन है, जो स्वर्गलोक में जाकर के वो करते हैं वो भी विषय में बंधा रहता है, भाई मुझे सोमरस मिलेगा। तो यहां भी भगवत धाम में जो भोग में स्वर्ग रहता है, ये भी एक प्रकार की भगवत ऐश्वर्य है। तो वहां भी जो फर्स्ट पोजिशन है तो ये भी सुख में भोग में बांधने वाले हैं। भोग ऐश्वर्य प्रसक्तान, क्योंकि चेतना उसमें फंस जाता है और जो सुख भोग करता है तो उनकी पुण्य क्षय होता है और जो दुख भोग कर लेता है उसकी पाप क्षय हो जाता है। तो दोनों चीज में क्षय ही होता है, कोई प्रॉफिट नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो भी शुभ और अशुभ है, पाप और पुण्य है, ये सब मुझे अर्पण करो। शुभाशुभ फलरेव मुख्य से कर्म बंधने संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तं माम उपस्थिति। ये दोनों कर्म को मुझे ही अर्पण करके संन्यास ले लो। कैसे करें? कहते पद्मम पत्र मिमाम भसा। ये संसार में आप ऐसे रह सकते हैं जो ऐसे कर्म फल को भगवान को अर्पित कर देता है। ब्रह्मण्य अध्याय कर्माणि संगं तक्त्वा करोति जा लिप्यते न स पापेन पद्म पत्र मीमांसा। हम ध्यान रखते हैं किसके प्रति? भोग के प्रति। परंतु जब त्याग आ जाए, जैसे कहते हैं न बंधाय गृहामतम न निर्भिन्न चेतसा, जिसकी चेतना निर्विन्न हो गया है, विशेष मुक्त हो गया है, तो वो ही वास्तविक सुख को अनुभव कर सकता है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी उदाहरण देते हैं कि देखो, हम जो घर बनाते हैं तो घर बनाने के पहले, किचन बनाने के पहले हम टॉयलेट बाथरूम बनाते हैं, क्योंकि त्याग करने पर ही शरीर को सुख मिलता है, है कि नहीं? त्याग ही वास्तविक सुख के कारण है। यदि पेट साफ नहीं होता है, सवेरे सवेरे दिमाग खराब रहता है, है कि नहीं? खाने की भी इच्छा नहीं है, केवल नींद लगता है। इसलिए भगवान कहते हैं त्यागत शांति अनंतरम। ये शांति तब प्राप्त होती है, अनंत सुख प्राप्त होती है, जब हम त्याग को अपनाते हैं। तो प्रभुपाद हम पुष्टि करते हैं कि ये कुशलता है कि किस प्रकार हम कर्म करें। जज्ञा अर्थात कर्मण अन्यत्र लोकयम कर्म बंधनम तदर्थ कर्म कौंतेय मुक्त संग समाचर। हम वैष्णव एटिकेट सीखते हैं ना, क्या है, क्या कहते हैं वैष्णव एटिकेट्स को? वैष्णव सदाचार। तो यही है समाचार, किसकी प्रति कैसे व्यवहार करना चाहिए। यदि हम व्यवहार में कुशल नहीं बनते हैं, हम सिर्फ एक कालिए की तरह हैं। ये संसार में जितनी वस्तुएं हैं भगवान की हैं, हम उतनी ही स्वीकार करना चाहिए जितनी आवश्यक है, और दूसरी किसकी है ये जानकर किसको त्याग करना चाहिए। परंतु देखिए, ये जो काम है एक कालिए है जो शुद्ध विचार को दूषित कर देता है, जमुना जैसे जल को, रथ को दूषित कर देता है। आप जानते हैं ना, कालिया को यह पता था कि गरुड़ जी वहां नहीं जा सकते, और कालिया का क्या गलती था? अरे उनको हिस्सा के रूप में ब्रह्मा जी इसको सैंक्शन किए हैं, भाई वो सर्प भोजन करेगा, परंतु कालिया ने उनकी हिस्सा देने में इनकार कर दिया। क्या परिणाम हुआ? तो ये कालिया आकर के जमुना जल में रहने लगा। गरुड़ जी से तो खाया बहुत जोर से लात, हाँ, भाग के आ गया रमणक द्वीप से। अभी कहां है रमणक द्वीप? हाँ, फिजी में है। वहां से भाग करके आया, यहां से गरुड़ जी ने ऐसे मारे पंख से भाग के आए। दोनों चीज विचार करना चाहिए। गरुड़ जी के प्रति ठीक से व्यवहार नहीं किया कालिया, और गरुड़ जी के प्रति और कौन ठीक से व्यवहार नहीं किया? सभरी मुनि। एक उच्च कोटि के तपस्वी हैं जो जमुना जल में रह करके तपस्या कर रहे थे, अपने को इस संसार के बंधन से ना फंसाने के लिए उन्होंने जमुना जल में स्नान करते थे, नहीं ध्यान करते थे। तो मछली खाने के लिए जब गरुड़ जी गए तो तुरंत कहे कि अगली बार यदि आप ऐसा आओगे ना आपकी प्राण से हाथ धोना पड़ेगा। वाह, गरुड़ जी कहे महाराज दंडवत प्रणाम, मैं नहीं आऊंगा। गए गरुड़ जी, सिर्फ गरुड़ जी इनकार कर देने से सभरि मन की फलदान हुआ। मान रहा था कि 50 लड़की से शादी किए, इतनी काम वासना उत्पन्न हुए, बाबा ने सब कुछ छोड़ करके आगे वृंदावन धाम और जमुना जल के अंदर तपस्या करे थे महाराज। बस एक बात पर हो गया काम, एक लड़की नहीं 50 लड़की उनको चाह किए, भाई हमसे भी आप शादी कर लीजिए महाराज, हमारे जीवन भी धन्य हो जाएगी। इसे जो वैष्णव अपराध होता है ना सूक्ष्म रूप में किसकी प्रति द्वेष से, ये जो कुशलता ना होने पर ऐसा ही परिणाम भुगतना पड़ता है। ये सत्य रोड है भक्ति का, परंतु थोड़े से भी ये द्वेष उत्पन्न हो गया तो कालिया का भी जहर बढ़ जाएगा और काम रूपी वासना भी बढ़ जाएगी। परंतु इतना है कि उन्होंने धाम के आश्रय लिए थे, इसलिए कालिया कि अंदर जहर होने पर भी, भगवान को डंसने पर भी भगवान उनको क्या दिए, अपने चरण कमल दिए। अपराध तो होता रहता है परंतु आश्रय लेना चाहिए धाम की, नाम की, गुरु और वैष्णव की। देवानंद पंडित उन्होंने श्रीवास के प्रति अपराध किए परंतु बक्रेश्वर पंडित के आश्रय लेने से बच गए, चैतन्य महाप्रभु कृपा दी। तो इसी प्रकार हमारी भक्ति जीवन में यदि हम ठीक तरह से आचरण नहीं करते हैं परंतु यदि एक कुशल भक्त के अधीन में रहते हैं उनकी गाइडेंस से हमारी फिर सुधार हो जाएगी, हम सुधर जाएंगे। सनातन गोस्वामी इस प्रसंग में कहते हैं कि प्रत्येक साधक को यही लक्ष्य रखना चाहिए, हम जो भी कुछ कर्म करते हैं इस कर्म की फल हम क्या करना चाहिए, भगवान को अर्पित कर दे। इहार जस्य हरेर दस्य कर्मणा मनसा गिरा। हम तीन प्रकार कर्म करते हैं, मन से, शरीर से, वाणी से। परंतु हर अवस्था में हम कैसे अपने को मुक्त रख सकते हैं, जीवन मुक्त समुच्यते, जब हम इसको हरेर दास्य, ये दोनों पंचमी और षष्ठी विभक्ति में ले सकते हैं, हरि के दास, भगवान की भक्तों के चरण में जब हम इसको निवेदन कर देते हैं तो ये बंधन से मुक्त कर देता है। भगवान कहते जब करो कुरुसह क्या है, जद अस्नासी जद जीवसी ददासी जत जत तपस्वसी कौंतेय तत् कुरुस मदर अर्पण। कहते मद भक्तानाम अपीसु अर्पितम, मेरी भक्तों के द्वारा इसको अर्पण करो। ठीक है मैं आपकी भोग लूंगा लेकिन जब तक तो आप शुद्ध नहीं हुए हैं, आप तो ब्राह्मण सुदामा नहीं हैं, इतने प्रीति बढ़ गया है सुखा चूड़ा को मैं खा लूंगा, तो हमारी प्रेम व भक्ति इतनी बढ़ी नहीं है, उनका भक्ति इतनी रसमय था सुखा चूड़ा को भी भगवान ले लिए, परंतु हमारी हृदय में भावना इतनी सुखा है हम भी घी से बना करके देने पर भी भगवान स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान जानते हैं कलयुग में घी नहीं मिलेगा, शुद्ध घी चर्बी से बना हुआ है, कंटामिनेट है। इसलिए भक्ति भावना को जागृत करने के लिए सनातन गोस्वामी भक्ति रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंध में इसकी बहुत की पॉइंट दिए, दास्य। जैसे पुजारी जी भोग लगाते हैं क्या कहते हैं, माधव जी कहां हैं, क्या भोग लगा कर क्या मंत्र पढ़ते हैं? हाँ, कि मेरी कुछ योग्यता नहीं है, आप इसको स्वीकार कर दीजिए, स्वीकार कर लीजिए। हाँ, भक्ति हीनम क्रियाहीनम ज्ञानहीनम जनार्दनम जत पूजितम मया देवम परिपूर्णम तद अस्तु में। आप तो पूर्ण है, ये समर्पण भाव। तो इस प्रकार जब कोई व्यक्ति हमेशा ही दास्य भाव में रहता है तो भगवान उनकी हर सेवा को स्वीकार करते हैं, हर मुहूर्त उनकी सेवा को स्वीकार करने के लिए प्रतीक्षारत रहते हैं। कुबड़ी ने कंस की सेवा करती थी, परंतु उनके मन में ऐसे हमेशा थी, मैं किसकी, एक मंद पुरुष की, दुष्ट पुरुष की सेवा करती है। परंतु कृष्ण बलराम देखते ही उनकी सेवा स्वीकार करने के लिए तुरंत आग्रह किए, अरे लगा दो ना एक बार, कितनी सुंदर अंगराग है और आपकी चेहरा कितनी सुंदर है। यदि कुबड़ी थी, भगवान उसकी सेवा को स्वीकार करने के लिए उसको प्रशंसा किए। हमारी भी टेढ़ी नजर है, टेढ़ी दृष्टि है, आप जानते हैं हम सबकी हृदय तीन गुण से प्रभावित है और कुबड़ी तो तीन त्रिवक्रा थी, परंतु वो कृष्ण के साथ मैच हो गया उनकी, क्योंकि कृष्ण भी तीन भंग में खड़े हैं। राधा रास बिहारी कहते मेरी मैचिंग वाइफ है तुम, भूमि देवी है, और इसलिए उनकी कुरूप होने पर भी भगवान उसको कहते हैं कि तुम सुंदरी हो, ये थोड़ा लगा दो अंगराग और इससे रिझ गए। क्योंकि सेवा स्वीकार करने के लिए भगवान हमेशा ही तत्पर रहते हैं, जो भक्त मन में ऐसा ही सोचता रहता है, ये भगवान का अनुग्रह है। और लगाने के बाद भगवान उनको ऐसे ही सुंदरी बना दी। ईश्वर महाराज कथा में बता रहे थे वृंदावन में, क्योंकि एक भक्त ऐसे ही स्तुति करता है कि देखो ये तीन गुण से मेरी हृदय ऐसे ही दूषित हो गया है, ये अज्ञान के अंधकार से मेरी हृदय भरी हुई है, परंतु प्रभु आपकी कुछ किसी चीज में आसक्ति नहीं है, पर किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप परिपूर्ण हैं, परम ब्रह्म हैं और लक्ष्मीपति हैं, परंतु आपको एक चीज की आवश्यकता है, क्या है? आप जब माखन चुरा करके भागते हैं और गोपियां माता जसोदा ने आपको पकड़ने के लिए भागती हैं, तो आप ऐसे एक स्थान ढूंढते हैं जहां आप छिप जाएंगे, आपको कोई नहीं देख पाएगा। तो प्रभु ऐसे स्थान ही मेरी अज्ञान अंधकार रूपी हृदय है, आप वहां पर आप ठीक से छिप जाएंगे, मैं ही अज्ञान रूपी अंधकार रूपी हृदय को आपके पास समर्पण करता हूं। तत्करो समर्पण, ये भी दे देना चाहिए, दे दो। तो इसलिए कृष्ण भजन के लिए हम सबको प्रतिकूल नहीं सोच सकते। भक्ति अनेकुल सदा कार्य रे स्वीकार, कृष्ण भजने जहां है अनुकूल, विषय बलिया त्यागे तहां है भूल। ये बड़ा भूल कर देंगे, गलती कर देंगे। अरे विषय हमारे लिए हैं, क्योंकि हम विषय की विषा नल में हम जल रहे हैं, विषय विषा नले दीवाने सी ही आ जल, परंतु उनके लिए वो विष नहीं है, जिन्होंने अपने विष को भगवान के चरण के स्पर्श प्राप्त करके नष्ट कर दिए हैं काली की तरह, वो विष नहीं है। सर्प का जब तक दांत रहता है वो जहरीला होता है, दांत तोड़ने के बाद वो सांप काट दें, दो ना तीन दांत होता है जो जहरीला होता है, वो काटने पर व्यक्ति का शरीर में वो उतर जाता है जहर। परंतु जो सोपारी होता है तो इस दांत को बहुत कायदे से तोड़ देता है, तो फिर वो सांप की विष से कोई प्रभावित नहीं होता। हमारे जो विषय रूपी इंद्रियां हैं वो जहरीला हैं, परंतु इस इंद्रियों को यदि हम भगवान की सेवा में लगा देते हैं तो इंद्रिय क्या होता है, शुद्ध हो जाती है। कौन सा श्लोक है? ऋषिकेना ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। उसका पहला लाइन क्या है? हा, सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम। ये इंद्रिया निर्मल हो जाता है और मुक्त हो जाता है जब हम इसको भगवान की सेवा में लगाते हैं। तो प्रभुपाद इसको उदाहरण देते हैं, रात में ब्रह्मचारी यदि एक ग्लास से ज्यादा दूध पी लेते हैं पेट खराब हो जाता है ना, लूज मोशन, क्या करे, पेट ठीक नहीं लग रहा है, फिस्ट है फिर भी इच्छा नहीं, परंतु फिर थोड़ा मट्ठा बना लो, रेस्टोरेंट से थोड़ा दही ले आओ और तो लस्सी बनाकर पी देने से ठीक हो जाता है पेट। तो वही दूध से बनी हुई चीज है। और एक उदाहरण प्रभुपाद देते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, यदि हम इसको हीटर के साथ लगाएंगे तो क्या होगा? हाँ, गर्म, हाँ ताप देगा। परंतु वही इलेक्ट्रिसिटी यदि हम कूलर के साथ लगाएंगे तो क्या होगा? ठंडा हवा मिलेगा। तो वही कर्म यदि हम कृष्ण को अर्पित कर देते हैं तो वही हमको बंधन से मुक्त कर देता है। तो ये है कुशलम। ठीक है, और एक मेन पॉइंट हम भूल के गए, वो मद वार्तायाम यामानम। ये बहुत विशेष चीज इंपॉर्टेंट है कि हमारी साधक के लिए, ये तो कर्म करने वाले के लिए है, परंतु जो साधक भक्ति जो कुछ स्वीकार किए हैं उनके लिए क्या करना चाहिए? मद वार्ता यात यामानम, एक क्षण भी ऐसे बेकार नहीं गवाना चाहिए कृष्ण कथा के बिना। इसलिए भगवत गीता में भगवान कहते सततम कीर्तयन्तो मां जतन्तस्य दृढ़व्रता। व्रत लिए है ना, कपड़ा को कलर करने के लिए नहीं, क्या व्रत? कीर्तयन्तो सततम, ये व्रत लेना चाहिए। पीला से सफेद, सफेद से सेफ्रन, फिर सेफ्रन से कभी कभी फिर उल्टा दिशा पर आता है, ये व्रत नहीं है। व्रत होना चाहिए प्रयत्न पूर्वक भगवान की सेवा करने की। देखो ना, एक बार प्रयत्न करके, भगवान कहते हैं देने पर आप मिलेगा, कुछ तो दो, मैं देता हूं कि नहीं देखो। अनन्य चिंतयंतो, मन तो एक बार मेरी चिंतन में लगा दो, कोई आवश्यकता की चिंता नहीं रहेगा। जोग क्षेम बहामी अहम स्वयं। देखते मद वार्तायम, भगवत भक्ति में यदि हम भगवान के विषय में सुनने के लिए लालायित नहीं होते हैं, उत्कंठित नहीं होते हैं, तो निश्चित रूप से हम अपने के साथ ही स्वयं धोखा करते हैं। कुछ समय के बाद लगता है बहुत, इतने हम सीनियर हो गए, आप नया भक्त की तरह हमको सिखाओ मत। फिर कुछ दिन के बाद यात्रा करते हैं विदेश, हो गया पूरी। इसलिए भगवान कहते हैं न उत्पादम, सुत गोस्वामी कहते हैं न उत्पादम रतिम यदि श्रम एव ही केवलम। श्रम एव ही केवलम, तीन बार कहते एव ही केवलम। जैसे हम कहते हरि नाम हरि नाम हरि नाम ही केवलम, इसमें भी तीन विशेषण हैं। इसमें भी भगवान कह, नहीं, सुत गोस्वामी कह रहे हैं धर्म सुनिष्ठताम पुंसा, धर्म करने के लिए भाई गेरुआ किए हो वस्त्र को, लेकिन इसको कैसे अनुष्ठान करना है? वासुदेव कथारति विश्वक्सेन कथासूय न उत्पादयत। इसलिए फिर बार बार जोर देके कहते हैं जदनो ध्यासिन जुक्ता कर्म ग्रंथि निबंधनम छिंदंती को विदातस्य कोन कुर्जात कथारतिम। ऐसा कौन विद्वान है अनुधासिना झुकता, सिर्फ ध्यान लगा दे प्रभु के नाम में, एक बार रटन लगा करके ध्यान लगा दे, इस असी से, इस खड़ग से कर्मरूपी जो ग्रंथि लस्ट डिजायर पड़ा है ये नष्ट हो जाता है। और ये संसार में सबसे बलवान कौन है, कौन बोल सकता है? ये संसार में सबसे बलवान कौन है? कौन? कामदेव। कामदेव सबकी पर क्या करते हैं, विजय प्राप्त कर लेते हैं। परंतु काम को जीतने वाला कौन है? हां, कृष्णा। तो भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि बलराम वही काम को जीत सकते हैं। आप जानते हैं बलराम कैसे जीतते हैं काम को? भगवद गीता में एक फेमस वर्स है, क्या है? बड़ा बड़ा बताम चाहम काम राग विवर्जिता धर्म अविरुद्ध भूतेषु कामस्मिन् भरतवर्षव। तो बलवान की जो बल है, जो काम पर विजय प्राप्त कर ले, ये कौन है? बलराम। बलाधिक्यम बलम विदो अयं ही रोहिणी सूत। गर्ग मुनि जब नामकरण कर रहे थे, कहे कि ये जो बलराम है, ये रोहिणी सूत है, ये बलाधिक्यम, इसकी बहुत बल है, ये क्या करता है, उनकी शरण लेने वाले काम के सागर को पार कर जाते हैं। काम राग विवर्जिता तुरंत मुक्त हो जाते हैं। तो यही बलवान की बल है। जब बलराम की बल प्राप्त हो जाए, उनकी कृपा प्राप्त हो जाए, क्योंकि गुरु के रूप में, हाँ, जो बलराम की प्रतिनिधि स्वरूप है गुरु, वो देते हैं शिष्य को बल देते हैं। भक्तों को जब सेवा में लगाते हैं तो भूल जाते हैं। एक हमारे भारत में एक प्रसिद्ध ब्रह्मचारी थे, क्या है उनके नाम, महाराज बता रहे थे, क्योंकि एक किसान ने नदी के अंदर अनाज को लेकर जा रहा था, तो वो कीचड़ में फंस गया। क्या सकट, जब छकड़ा फंस गया तो बहुत प्रयत्न किया, बैल भी पानी में है, तो ये ब्रह्मचारी के अंदर इतनी तेज था, बल था, तो वो किसान को बोला, तुम दोनों बैल खोल दो और मैं स्वयं इसको उठा लेता हूं, और ऐसा ही खींच के पार कर दिया। तो प्रेस रिपोर्टर उनके पास आए, उनको पूछे कि महात्मा जी, आप इतने तेजस्वी लगते हैं, अब सच बताइए, आपको कभी काम नहीं सताता है? कहा कि महाराज, हम क्या कहें, हम तो एक क्षुद्र जीव हैं, परंतु मेरे पास इतनी काम पड़ा है ना, तो वो काम को आने के लिए टाइम नहीं मिलता है, मेरे काम तो छुटकारा मिल जाए। क्योंकि जो ऐसी प्रकार अपने जीवन को हमेशा ही झुकता रखता है ना, तो काम प्रवेश नहीं कर सकता है। इसलिए कहते, झुक्तस्य भुक्तांस्य निजुंजतोऽपि। गुरु हमेशा ही शिष्य को भगवत सेवा में लगा के रखते हैं, इसलिए काम प्रवेश नहीं कर सकता है। मंदिर अमार्चनादिषु, इसलिए ये काम को जीतने के लिए क्या चाहिए, भगवत आराधना, सब प्रकार से समर्पण होकर के आश्रय लेना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसके कोई प्रश्न है?
हरे कृष्णा प्रभु जी।
कहां से आवाज आ रहे हैं?
इधर इधर इधर।
अच्छा अच्छा, कृष्ण मेरा धन्यवाद।
प्रभु जी, आपने बोला क्या, जैसा शबरी मुनि ने अपराध किया था कालिया का, इसलिए उसको 50 लड़कियों से शादी करना पड़ा। जब कोई ब्रह्मचारी का या किसी का अपराध करता है, तब उनको शादी करनी पड़ती है, मतलब एक शाप है, या एक ये हमें ऑलरेडी ग्रस्त जीवन में है, फिर भी हमारा नाम में रुचि नहीं है, सेवा में रुचि नहीं, ये कौन सा अपराध है हमारा?
गोलोक के र प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन रतिना जन्मिला केनु ताय। क्यों नहीं जन्म हुआ, किस लिए, किसको याद है? भजन। ये प्रेम धन है, लेकिन इस इतनी महत्वपूर्ण धन को हम लापरवाही करते हैं। मैं भूल गया एक बात बोलने के लिए, ये प्रसंग आ गया तो मुझे याद आया। ये बॉम्बे मंदिर में देवकानंदन प्रभु थे, ब्रजहरि प्रभु, तो हमारे एक गुरु महाराज के शिष्य, उनका नाम है घनश्याम, तो बहुत बड़ा स्कॉलर है, बैठे बैठे ही संस्कृत के श्लोक बोलते लगे। परंतु क्या करेगा, गंगा में जाए तो गंगाराम, जमुना जाए तो जमुनाराम, यहां से थोड़ा सी छुट्टी लेके जाएगा, मैं जा रहा हूं वृंदावन, चल जाएगा हरिद्वार, और वहां क्या करेगा, शिखा काट देगा और ये कंठीमाला उतार देगा, वहां स्पट्टिक रुद्राक्ष डाल देगा और महामंडलेश्वरी बन जाएगा। वो जाएगा बड़े बड़े लोगों के साथ, महामंडलेश्वरी के साथ। तो फिर जब आ जाता था, थोड़ा से छोटा शिखा रखेगा, इतने छोटे बाल, और यहां आ जाएगा। तो महाराज गुरु महाराज कहते थे, देवकीनंदन इसको संभालो, ये कितनी बार ऐसा करता, बार बार ऐसे जाएगा। परंतु उसके पास बहुत अच्छा कला है, गाने का, प्रीचिंग करने का, सब प्रकार कला में निपुण है। परंतु क्या करे, गंगाराम है, हरिद्वार में जाएगा, मंडलेश्वरी बनेगा। तो एक बार गुरु महाराज क्लास दे रहे थे वृंदावन में, तो ऐसे कहे कि वैष्णव कितने करुणा होते, कि उनकी करुणा के द्वारा ये बद्ध जीव को भक्ति प्रदान करते हैं, कृष्ण के चरण तक लेके जाते हैं। तो वो अपने बारे में कह रहा था, गुरु महाराज वैष्णव तो बहुत करुणामय होता है। तो महाराज उनको कहे थे कि तुम बाहर रहो कुछ दिन। तो इसलिए वो प्रश्न कर रहा था कि वैष्णव बहुत करुणामय होते हैं। तो तुरंत गुरु महाराज बोले, वैष्णव तो करुणामय होते हैं, परंतु ये करुणा के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करना है। गौर गोविंद महाराज कहते थे कि चैतन्य महाप्रभु पतित पावन है, परंतु कपटी पावन नहीं है। जो कपट रख करके जानता है कि मेरी बीमारी है और डॉक्टर उसको दवाई देता है, परंतु इसको ठीक से सेवन नहीं करता है, ये है चीटिंग। तो ये जनरल लॉ है, परंतु हमारी कई सारी अनर्थ से जुक्त है हमारी हृदय, हाँ कई सारे संस्कार से जुक्त है। तो धीरे धीरे सुधार हो रहा है, हाँ प्रयत्न है, क्योंकि पूरी सरेंडर होने से भगवान स्वयं कहते हैं, अहं त्वं सर्व पापेभ्यः अपि चेदेभि पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृत्तम सर्व ज्ञान प्लवनैव वृजिनं संतरिष्यसि। अति शीघ्र में आपकी सारी पाप को ले लेता हूं, एक मोमेंट, अचिरात। इसका मतलब जो भगवान कह रहे हैं, ये कोई कपट करके नहीं कर रहे आपको धोखा देने के लिए, वो कह रहे कि हमारे पास ऐसे ही सरेंडर होनी चाहिए। सूर्य के सामने आने पर कोई अंधकार रहेगा, आप बताओ, नहीं रह सकता। तो यही है कि हमारे हृदय में जो अनर्थ है वो पूरी तरह से शरणागत नहीं होते हैं। कुछ है जो अहंकार, विमूढ़ात्मा कहते हैं ना अहंकार, ये अहंकार सिर्फ गुरु की कृपा होने से नष्ट होता है। जैसे संकर्षण है, क्या करते हैं, अपने मुख से जब आग निकालते हैं तो पूरा ब्रह्मांड को जला देता है, राख कर देते हैं, है कि नहीं। वही बलराम पूरा ब्रह्मांड को धारण करके रखे हैं, वही संकर्षण के रूप में अपने मुख से जब आग निकालते हैं पूरा ब्रह्मांड को जलाते हैं। तो वही संकर्षण जब गुरु के रूप में हमारी अहंकार स्थिति को जब जला देते हैं, राख बना देते हैं, तब फिर हम सरेंडर हो जाते हैं। और बलराम यही दिखाए, अरे भाई मैं बड़ा भाई हूं पर मुझे सेवा करना है। तुरंत कृष्ण को लेकर जब वसुदेव चले, संकर्षण बन गए, अनंत सज्जा है, वही अनंत के रूप में मुख से आग निकालते हैं परंतु सेवा के लिए ढक दिए। वही अहंकार यदि हम सेवा के लिए ही निछावर कर दे, गुरु के चरण में समर्पण कर दे, तो फिर ये अनर्थ दूर हो जाएगा, राग बन जाएगा। संतुष्ट है मेरे प्रश्न में, उत्तर में? और किसकी कोई सवाल है? और किसके नहीं ना? ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री गौर निताय, श्री श्री राधा रास बिहारी ललिता विशाखा सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे।